ये आकाशवाणी है। अब आप मनोज से समाचार सुनिए। लोकसभा ने तटीय नौवहन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारतीय समुद्री सीमा के व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करना है। विधेयक का उद्देश्य तटीय नौवहन के विनियमन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना, तटीय व्यापार को बढ़ावा देना और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि परिवहन के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा ने कल रात विधेयक पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, इसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान है। इससे संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हितधारकों के साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ का लाभ केवल मुस्लिम को ही मिल सकता है और कोई गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाने के लिए इसमें मुसलमानों के सभी संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा।
हमने जो नया प्रावधान लेके आया उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो भी जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिल करके वक्फ बनेगा। जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 मेंबर्स मिनिमम शैल बी वुमेन।
कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ये विधेयक भ्रामक है और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से लाया गया है। द्रविड़ मुनेत्र कजगम के तिरुचि शिवा ने कहा कि विधेयक में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। राज्यसभा में इस समय एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल विधेयक पर अपने विचार साझा कर रहे हैं।
और इसीलिए वो सब ठीक है। आप तब वो पार्टी में थी तब आपको मालूम नहीं है इतिहास, आपको मालूम नहीं है। आप वो पार्टी की स्पोक्समैन थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान भू रणनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए सशस्त्र बलों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने सेना कमांडरों के 2 दिन के सम्मेलन में कहा कि हाइब्रिड युद्ध सहित गैर परंपरागत युद्ध भविष्य में पारंपरिक युद्धों का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि साइबर, सूचना, संचार, व्यापार और वित्त सभी भविष्य के संघर्षों के अभिन्न अंग बन गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों पर 26% जवाबी शुल्क लगाने के फैसले के प्रभाव का विश्लेषण और आकलन किया जाएगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए उचित उपाय करेगी। मनीष राठौड़, हितेश और अभिनाश जामवाल अपने अपने वजन वर्ग में जीत के साथ विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जामवाल ने जर्मनी के डेनिस ब्रिल को, हितेश ने इटली के गैब्रियल गुइडी रोनतानी को और मनीष ने ऑस्ट्रेलिया के यूसुफ चोटिया को हराया। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।